Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Hari Om. Pujya Maharaj ka purucharan mein vandan. Pujya Maharaj prati varsh ki tarah hamare beech mein hai. हमेशा कुछ न कुछ अच्छी बातें जो भी वेदवाणी है उनके रूप में रखते हैं. कठोपनिषद इस शुक्र जी महाराज जी द्वारा प्रवचन होगा. महाराज जी को भागवत में भी हमने बहुत ही आनंद लिया है और हमेशा जब भी आते हैं कुछ न कुछ हमें सिखला के जाते हैं और जो जीवन में हर समय हमें उपयोगी रहता है उसी तरह से महाराज जी हमारे बीच में आज उपस्थित है. आप सबकी तरफ से वंदन करते हुए हरिओम.
परम पूज्य परम सिद्धेय महामलेश्वर श्री स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज, परम सिद्धेय परमादरणीय स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, महाराज श्री के पावन चरणों में नमन करते हुए, पिछले वर्ष आपने कठोपनिषद में भूमिका के रूप में प्रथम वल्ली के कुछ मंत्रों पर विचार श्रवण किए थे. कठोपनिषद वेदांत का अन्यतम ग्रंथ और इस ग्रंथ को और भी महत्वपूर्ण बनाने वाली इसकी आख्यायिका बालक नचिकेता की. बालक नचिकेता का जीवन, उसकी हर क्रियाएं प्रक्रियाएं, बोलने का ढंग और बोलने का समय, उनके जीवन की विशेषता का प्रतिपादन करती हैं. मैं याद दिलाऊंगा पिछले बार जो विषय हुआ थोड़ा, फिर हम लोग आगे के विषय में प्रवेश करेंगे. श्रीमद् भगवद गीता का एक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मच्छिरेनाधि गच्छति. भगवान ने कहा कि ज्ञान मिलता है, लेकिन ज्ञान पाने के तीन उपाय भगवान ने बताए हैं. श्रद्धावान लभते ज्ञान, भगवान कहते हैं कि श्रद्धा वाले व्यक्ति को ज्ञान मिलता है. और बात भी सही है, श्रद्धा के अभाव में व्यक्ति समझ नहीं पाता है. हमारे इंद्रियों का स्वभाव है इंद्रिय और विषय का सन्निकर्ष होने से इंद्रियां पदार्थों को दिखाती हैं. इसलिए बहुत सारे दर्शन शास्त्रों में ज्ञान की परिभाषा दी, प्रत्यक्ष की परिभाषा दी, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम. इंद्रिय और अर्थ के संबंध से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है वही प्रत्यक्ष है. और आपके वेदांत में भी प्रत्यक्ष ज्ञान मानते, यत साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, अपरोक्ष ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान. तो क्या सचमुच श्रद्धा की जरूरत है? क्या ज्ञान के लिए क्या श्रद्धा की जरूरत है अथवा स्वस्थ इंद्रियों की जरूरत है? हमारे पास आंख है और आंख ठीक ठाक है, प्रकाश है, वस्तु है, तो बिना श्रद्धा भी आंख के द्वारा वस्तु का ज्ञान हो जाता है. हमारी कान ठीक हैं, शब्द हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है, तो बिना श्रद्धा भी कान ज्ञान करा देती है। रसनेन्द्रिय रस का ज्ञान करा देती हैं, तो त्वचेन्द्रिय स्पर्श का ज्ञान करा देती हैं, तो इसमें श्रद्धा की क्या जरूरत है। कोई मिर्ची खा ले तो वहां पर वो तीखे का जो ज्ञान है वो श्रद्धाजन्य थोड़ी है। आप श्रोत्रेन्द्र से श्रवण करते हैं, सत्संग करते हैं, और एक एक शब्द हमारे अंतःकरण में ज्ञान को निर्मित करता जाता है, तो इसमें कोई श्रद्धा की जरूरत तो नहीं है। आपको केवल वाक्य पद पदार्थ का बोध होना चाहिए, बस भाषा आपको आनी चाहिए, आपकी श्रुति हो, ज्ञान का संकलन होगा। हमारे अनुभव में आता है कि ज्ञान के लिए श्रद्धा की जरूरत नहीं, बिना श्रद्धा ज्ञान हो जाता है। तो फिर भगवान कह रहे हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, फिर ये कौन से ज्ञान की बात भगवान बोल रहे हैं। और भगवान एक दूसरी भी बात बोली, अन्यत्र अज्ञश्चा श्रद्धधानश्च संशय आत्मा विनश्यति। जो अज्ञानी है और श्रद्धा नहीं है, भगवान कहते को व्यक्ति नष्ट हो जाता है। और भी बहुत गहरी बात बोली, श्रद्धावान व्यक्ति को ज्ञान होना तो ठीक है, लेकिन श्रद्धा नहीं होने से भगवान कह रहे कि वह व्यक्ति नष्ट हो जाता है। तो यहां विचारणीय प्रश्न है कि ये ज्ञान आखिर कौन सा है, जिस ज्ञान को भगवान श्रद्धाजन्य कह रहे हैं। हमारे जीवन में तीन प्रकार के ज्ञान होते हैं। सामान्य ये तीन चीजें ध्यान रखने योग्य हैं, जानकारी, मान्यता और अनुभूति। जानकारी के लिए श्रद्धा की कोई जरूरत नहीं है। इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को जानकारी बोलते हैं। स्वस्थ इंद्रियां हो, बुद्धि अच्छी हो, तो बहुत सारी जानकारियां हम लोग अंदर एकत्रित कर सकते हैं। लेकिन जो हम जान लेते हैं उसको मानने के लिए श्रद्धा की जरूरत है। भगवान यहां केवल ज्ञान के संकलन की बात नहीं कह रहे हैं, यहां भगवान ज्ञान को जीवन में उतारने की बात कह रहे हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञान मिलता है। तो भगवान ये कहना चाहते हैं कि जहां अनुकरण नहीं है, ज्ञान मान्यता नहीं है, ज्ञान आचरण नहीं है, वो भगवत दृष्टि से अज्ञान का एक हिस्सा है, वो ज्ञान नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति नदी के किनारे हैं और किनारे पर खड़े किसी हितैषी व्यक्ति ने बोल दिया है कि यहां बहुत गहरा गड्ढा है, और एक बार पानी के अंदर प्रवेश करने के बाद व्यक्ति बाहर नहीं निकल पाता है। सुना व्यक्ति ने, और सुनने के बाद सुनते हुए ही अंदर चला गया, तो उसको ज्ञान तो नहीं बोल सकते हैं। तो भगवान कह रहे हैं उसको हम ज्ञान बोलेंगे क्या? जैसे रामायण में आप सुन रहे थे ना, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, दाने के मोह में फंसना नहीं, तो उसको ज्ञान तो नहीं कहते हैं। वहां तो केवल एक जानकारी है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो अनुकरणात्मक ज्ञान है, सुना और सुनने के बाद व्यक्तित्व हो उठा, वो ज्ञान सुना और वो बन गया हमारा आचरण। जैसे आदेश मिला उठो, आप उठ गए, आदेश मिला बैठो, आप बैठ गए, आदेश मिला इतना करो, कर लिया, आदेश मिला आपको इतना ध्यान करना है और आप चल पड़े, ये ज्ञान है। तत्वमसी महावाक्य का उपदेश हुआ और आपको बोध हुआ कि मैं शरीर से अलग हूं। परम पूज्य महाराज श्री को भिक्षु शंकरानंद जी ने कहा कि आज के बाद तुम अपने को शरीर नहीं समझना, और पूज्य महाराज श्री कहते हैं उसके बाद मैंने अपने को कभी शरीर नहीं समझा, ये ज्ञान है, बोध हुआ। सुखदेव जी महाराज जी ने उपदेश किया पशु बुद्धि मिमाम जही, पशु बुद्धि का त्याग करो। अहम ब्रह्म परम धाम, ब्रह्माहम परमम परम पदम, मैं ब्रह्म हूं, मैं शरीर नहीं हूं। और उसी समय वो वाक्य बोध में रूपांतरित हो गया और घोषणा कर दी राजा परीक्षित ने, सिद्धोस्मि अनुग्रहितोस्मि भवता करुणात्मना, मैं सिद्ध हो गया, मैं बुद्ध हो गया आपकी कृपा से, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अब मेरे जीवन के भय, प्रलोभन, घृणा, ईर्ष्या सब खत्म हो चुके हैं। अब मैं अपने आप में शांत हो जाना चाहता हूं। ये श्रद्धावान लभते ज्ञान, ये ज्ञान माने जो ज्ञान सुनते ही हमारा चरित्र बन जाए, जीवन बन जाए, हमारी अनुभूति बन जाए, ये ज्ञान। और ऐसे ज्ञान में रूपांतरित होने के लिए भगवान करे श्रद्धा की जरूरत है। सामान्य आपको केवल जानकारी, परोक्ष ज्ञान, केवल शब्दार्थ संकलन करना है, उसके लिए कोई श्रद्धा की जरूरत नहीं। 700 श्लोक एक घंटे में बोले जा सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का आप यदि थोड़ा स्पीड से पाठ करेंगे तो एक घंटे में पाठ हो जाता है। संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता भगवान का एक घंटे का लेक्चर है। और भी श्लोकों को काट छाट कर लेंगे, पहला अध्याय तो गीता के अंदर है ही नहीं, उपदेशात्मक नहीं है वो, उसके भी बहुत सारे श्लोक निकाल दीजिए। और भगवान ने सही अर्थों में बोलना शुरू किया है दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से, अशोचानंद से। बाकी के भी संजय वाच्य को भी आप हटा देंगे, भूमिका, उपसंहार, उपक्रम को हटा दें तो और छोटी हो जाती गीता। तो मान लो कि आधा घंटे में क्या ज्ञान दिया भगवान ने, आधा घंटे का ज्ञान है। और उस आधे घंटे के ज्ञान से ही अर्जुन ने घोषणा कर दी नष्टो मोह। उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं समझ गया, आपका प्रवचन में समझ गया, इतना नहीं बोला है। वो घोषणा केवल सत्संग श्रवण की घोषणा नहीं है, वो अज्ञान की निवृत्ति की घोषणा है। सत्संग श्रवण करना अलग बात है और श्रवण का प्रयोजन जो अज्ञान की निवृत्ति है वो होना अलग बात है। शोक मोह मिट जाना अलग बात है, आत्मज्ञान को उपलब्ध होना अलग बात है। अर्जुन ने ये नहीं कहा कि आपने बहुत अच्छा प्रवचन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे हम लोगों को अच्छा लगता है, हम लोग बोलते भी हैं कि बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन यदि मैं पूछूं या कोई भी साधु कि पिछले साल मैंने क्या बोला था, तो आप बोलेंगे बोला तो अच्छा था, लेकिन क्या बोला था ये नहीं मालूम। ये केवल शब्द ज्ञान, केवल आपाततः जानकारी है और इसको भुलाया जा सकता, अनुभूति को आदमी नहीं भूलता है। आप स्मृति को भुला सकते हैं, अनुभूति को कैसे भुलाएंगे? आपके जीवन का जो सीक्रेट है वो कभी भूलता है क्या? क्योंकि वो अनुभूति है। आपने कभी किसी चीज का प्रथम अनुभव किया, कोई बहुत उत्कृष्ट चीज आपने देखी, सुनी, चखी, स्पर्श किया, वो आप कभी नहीं भूल सकते हैं। किसी ने अपमान किया, किसी ने तिरस्कार किया, वो भी आप नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि वो गहरी अनुभूति है। अनुभूति को कभी नहीं भूल सकते हैं। और मैंने मान लो कि कभी पिछले बार कोई गाली निकाली हुई, वो तो आप जरूर याद रखेंगे, क्योंकि वो आपके अंतःकरण को छू गई होगी, वो गाली आपकी अनुभूति बन गई होगी। इसलिए अर्जुन के जीवन में वो अनुभूति थी, वो केवल स्मृत्यात्मक ज्ञान नहीं था या केवल जानकारी नहीं थी। आधा घंटे का वो प्रवचन भगवान का, उपदेश, और घोषणा कर दी नष्टो मोह। मोह मिटा, स्मृति उपलब्ध हो गई, आत्मज्ञान को मैं उपलब्ध हो गया आपकी कृपा से। तो भगवान कहते हैं कि ये जो ज्ञान है ऐसा जो अनुभूति में बदल जाए, इस ज्ञान को पाने के लिए श्रद्धा की जरूरत है। आपके बालक नचिकेता के जीवन को देखना, श्रद्धा आविवेश, अब ये तीनों सूत्र बालक नचिकेता के जीवन में चरितार्थ हो जाते हैं। गीता के मूल मंत्र है श्रद्धा आविवेश, वो श्रद्धा के वश में हो गया। और वहां श्रद्धा के वश में हो गया ऐसा नहीं कह रही श्रुति, श्रद्धा आविवेश, श्रद्धा के आवेश में आया। श्रद्धा का आवेश, ये आवेश जो है ना, ये स्वतंत्रता नहीं है, आवेश पराधीनता है। हमारे में भी श्रद्धा आ जाती है लेकिन श्रद्धा का आवेश नहीं आता है। श्रद्धा का आवेश मैं आपको उदाहरण में समझा देता हूं। जैसे भूत का आवेश हो गया, किसी देवी देवता का हमारे में आवेश आ गया तो हम अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं और वहां वो देवी वो देवता ही स्वतंत्र होते हैं, हमको चलाते हैं और हम उनके द्वारा संचालित होते हैं। अब यहां पर कठोपनिषद के ऋषि कह रहे हैं कि केवल श्रद्धा नहीं जगी, यदि श्रद्धा जगी तो क्या भरोसा श्रद्धा का, कब श्रद्धा अश्रद्धा में बदल जाए कोई भरोसा है? ऐसा होता है कई बार हमारे में भी श्रद्धा जग जाती है और श्रद्धा जब हमें फल देना बंद कर देती है, कुछ नहीं मिलता है या कुछ विपरीत दर्शन हो जाते हैं तो अश्रद्धा में बदल जाती है, तो उसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन इनके मन में श्रद्धा जगी नहीं, श्रद्धा का आवेश हो गया और इसी का परिणाम था 5 वर्ष का बालक, करीब मान लो 5-7 साल का बालक अपने पिता के गोद में, बाकी कहानी तो आपको मालूम है, वो अपने पिता को बोल रहे हैं कस्मे माम दासी से, आप मुझे किसको दान दे रहे हैं। यही श्रद्धा का आवेश था क्योंकि स्वयं के दान का शास्त्र में विधान नहीं किया है। आपने सुना होगा भूदान, अन्नदान, स्वर्णदान, धनदान, वस्त्रदान, बहुत सारे अंग का भी दान, जैसे एक ऋषि ने किया था ना, तो ऐसे बहुत सारे दानों का उल्लेख है। लेकिन कभी स्वयं के दान का उल्लेख है क्या? नहीं है। और उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि आप कसमे इमाम दास से, आप मुझे किसको दान देंगे। यही आवेश है क्योंकि आदमी में आवेश आ जाता है ना देने का, तो उसको लगता है कि मैं क्या दूं क्या दूं क्या दूं, और कुछ भी दे तो उसको लगता है कि ये कम है क्योंकि आवेश आ गए हैं, अब आवेशित हो गया है। और ऐसे आवेश में वो चुप भी नहीं रहे, और चुप हो जाते तो उसको आवेश भी तो कहां से बोलते आप, पिताजी सुन नहीं रहे हैं, और नहीं सुनने पर ये चुप हो जाते तो आप उसको आवेश नहीं बोलते। एक बार बोला, द्वितीयम दोबारा बोला, तृतीयम तिवारा बोला, आप सीमा से बाहर हो गया। आदमी बोलता है ना भैया 3 बार, चौथी बार नहीं, आप गिनते हैं 33 बार, ओहो। अब वहां भी ऋषि पिता ने भी देखा, उद्दालक ने एक बार बोला चलो ठीक है बच्चा है कुछ नहीं, पचा लिया। आज वो उनको गलती दिखा रहे हैं, आज पिता अपमान भी महसूस कर रहे हैं, एकलौता एक पुत्र, और वो समझ भी गए कि ये क्यों बोल रहा है, मैं अनुचित गायों का दान कर रहा हूं। अब चुप हो गए, दूसरी बार भी बोल दिया और खलबली मची। और वो अकेले तो नहीं रहे होंगे ना, बहुत सारे और भी बड़े बड़े लोग रहे होंगे उनके बीच में। जैसे तीसरी बार उन्होंने बोला तो ऋषि ने उनको बोल दिया, मृत्यु त्वाम ददामि इति, तुमको मैं मृत्यु को दान देता हूं, तुमको शोक है ना दान होने का, तो ठीक है तुमको मैं मृत्यु को। अब वो सबसे ज्यादा खराब भाई, वो दान यदि किसी ऋषि को दे देते, किसी महात्मा को दे देते, किसी ब्राह्मण को दे देते तो ठीक था ना, लेकिन उन्होंने क्रोध में किसको दान दिया, क्योंकि क्रोध से दिया है ना, कि क्रोध क्रोध में आके आप किसी को देंगे तो आप मार ही तो देंगे। आप क्रोध में किसी को कुछ देना चाहोगे तो आप क्या देना चाहोगे? प्रेम का देना अलग होता है और क्रोध में देना अलग होता है। आदमी प्रेम देगा तो प्रेम में देगा तो जीवन देगा, जीवन संबंधी देगा, जीवन के उत्साह वर्धन के लिए देगा, और क्रोध में कोई चीज देगा तो क्या देगा? वो तो जीवन को खत्म करने की चीज देगा, जीवन को नष्ट करने की चीज देगा, मृत्यु देगा। और उन्होंने दे दिया मृत्यु में त्वाम ददामि थी। अब यहां वास्तविक बालक नचिकेता की श्रद्धा और श्रद्धा के बाद उनकी तत्परता दिखती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर। अब वहां तत्परता कैसी है? उनकी ऐसी श्रद्धा है कि जो श्रद्धा तत्परता में बदल ले। अब हमारे अंदर भी श्रद्धा होती है लेकिन तत्परता नहीं। कई बार ऐसा होता है कि नहीं, काश हम दिए होते, लगता है कि नहीं, लेकिन तत्परता नहीं थी ना उस समय, वो बुद्धि नहीं आई। हमारे में भी कई बार विवेक जगता है, बहुत सारी अच्छी चीजें जगती हैं, लेकिन समय पर नहीं जगती हैं। आदमी को लगता है कि काश हम भी कर गए होते हैं। ऐसा एक बड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण है, भगवान श्री कृष्ण कर्ण के उदारता की बहुत प्रशंसा करते थे, बहुत प्रशंसा करते। जब भी कोई बात हो तो भगवान बोलते कर्ण जैसा कोई उदार नहीं, कर्ण जैसा कोई उदार नहीं। अर्जुन को बात खलती, अर्जुन सोचता कि क्या मैं कंजूस हूं? अर्जुन भगवान को कहता कि क्या मैं उदार कम हूं? बोले मैं भी बहुत उदार हूं। लेकिन भगवान कहते कि कर्ण की कोई बराबरी नहीं। भगवान ने सोचा कि चलो अनुभवात्मक व्यवहारिक रूप से इनको हम दिखा देते हैं कि कर्ण कितना उदार। चातुर्मास का समय था, भगवान एक ब्राह्मण का वेश धारण कर कहो अथवा किसी ब्राह्मण को भेज दिया भगवान ने, अर्जुन के पास भेजा। चंदन की लकड़ी चाहिए, और शायद ऐसे समय भेजा कि भगवान को मालूम रहा होगा कि चंदन की लकड़ी नहीं है। अर्जुन के पास जाके रात्रि के समय ब्राह्मण ने बोला मुझे चंदन की लकड़ी चाहिए। अब अर्जुन ने पता किया भैया कि लकड़ी है क्या स्टोर में? बोले लकड़ी नहीं है, बोले कल मंगा के देंगे। और उन्होंने पता पूछ लिया ब्राह्मण देवता का, आपके घर हम पहुंचा देंगे। कितनी बड़ी उदारता, रात्रि के समय स्वागत किया, सत्कार किया, उसको उन्होंने घर तक पहुंचा भी दिया। वही ब्राह्मण कर्ण के घर गया और रात्रि के समय उन्होंने बोला कि मुझे लकड़ी चाहिए, और आश्चर्य वहां भी लकड़ी नहीं। लेकिन कितनी महत्व की बात है, तत्क्षण उसके दिमाग में बात आई कर्ण की कि लकड़ी का चंदन का पलंग तो है ना, चंदन का तो फर्नीचर तो घर में पड़ा हुआ है, बहुत सारी चीजें चंदन की, कोई पलंग ही थोड़े, सारी चीजें जो भी लकड़ी का सामान हो चंदन का ही था। उन्होंने कहा कि रुको रुको, और उसी समय अपना पलंग तोड़ा और पलंग तोड़ के उनको उसको लकड़ी बना दी। अब अर्जुन को पलंग दिख रहा था कि लकड़ी दिखाई दे रही थी? बहुत कीमती पलंग दिखाई दे रहा था, चंदन कहां मालूम पड़ा, चंदन की लकड़ी कहां मालूम पड़ी? और इनको पलंग नहीं मालूम पड़ा, इनको लकड़ी मालूम पड़ी। और उस पलंग को भी लकड़ी बना के गट्ठा बांधकर अपने सेवकों के द्वारा उनके घर पहुंचा दिया। दूसरे दिन उन्होंने उस ब्राह्मण को बुला लिया, बोले भगवान आपको लकड़ी चाहिए? बोले नहीं, मेरा काम हो गया। अर्जुन ने पूछा कि लकड़ी कहां से मिली? बोले कर्ण के यहां से मिली। अब ये बात भगवान ने अर्जुन को वो बता दी ये सारी घटना, तो अर्जुन ने क्या बोला होगा? अरे बोले इसमें क्या बड़ी बात है, बोले हमारे घर में भी पलंग था, हम भी तोड़ के दे सकते थे, ये बात अलग है, लेकिन आपने दिया नहीं ये बात अलग। अब बाद में अर्जुन ने जरूर सोचा होगा कि काश मैं भी दिया होता, लेकिन तत्परता नहीं थी ना। श्रद्धा है लेकिन वो श्रद्धा तत्परता में बदल नहीं पाई। आप बाद में सोचे, मरने के बाद आदमी मर गया, भूखा था, भोजन मांगा, आपने नहीं दिया, मर गया, आप बाद में सोचे काश दे देते, नहीं। इसलिए तत्परता होना बहुत आवश्यक। भगवान इसलिए बोल रहे हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर। ये जो तत्परता है ना, यही हमें अपने जीवन में हमको विशेष बना देती है। सत्संग का समय है 7:30 बजे, तत्पर आप हैं, ओहो पहुंच गए, तत्पर हैं आप। रास्ते के कोई प्रतिबंध आए, कितना भी भय या प्रलोभन बीच में आए, लेकिन आप सोचेंगे नहीं नहीं, हम सत्संग नहीं छोड़, ये तत्परता है, हम साधना नहीं छोड़ेंगे। अब गोपियों के जीवन में तत्परता है, कृष्ण की बंसी सुनी, कितने प्रतिबंध आए, और सबसे पहले प्रतिबंध तो घर के थे। आपको अध्यात्म के मार्ग में प्रतिबंध बाहर के नहीं होते हैं, सबसे पहला प्रतिबंध तो हमारा घर होता है, पहला प्रतिबंध घर के लोग होते हैं, और उससे भी आगे जाके आप सोचें तो सबसे बड़ा प्रतिबंध तो हम ही हैं। हमारे जीवन के उन्नति के मार्ग पर चलने वाला और प्रतिबंध कराने वाला कोई सबसे बड़ा प्रतिबंध है तो वो तो हम ही हैं, हमारा ही मन है, हमारे अंदर ही भय, प्रलोभन, आलस, निद्रा आदि हैं, और वही प्रतिबंध बन जाते हैं। लेकिन तत्परता हो तो आदमी झाड़ लेगा, वो सारे प्रतिबंधों को झाड़ देगा और वो चल पड़ेगा। यहां बालक नचिकेता की जीवन में कितनी बड़ी तत्परता, विलंब नहीं किया उन्होंने, उन्होंने ये नहीं सोचा कि चलो पिताजी को यज्ञ होने के बाद में बता देते हैं, उन्होंने सोचा बाद में बता के फायदा भी क्या, जब पिताजी गलत काम कर चुके होंगे और उसका अदृष्ट भी इनके जीवन में बन चुका होगा, अनिवार्य भोगना होगा इनको, और तब बता के भी क्या फायदा। रास्ता तो तब बता दे जब काटा न गड़े। आपने रास्ता बाद में बता दिया कि अरे उस रास्ते से आप क्यों गए भाई, मुझे मालूम था, क्या फायदा। काटा गड़े कष्ट हो इसके पहले ही रास्ता दिखाना ज्यादा श्रेष्ठ है, और ये तत्परता इसी को बोलते हैं। बालक नचिकेता का जीवन इतना तत्पर, उसी क्षण जैसे मालूम पड़ा कि शास्त्र निषिद्ध कर्म पिता के द्वारा हो रहा है, सावधान कर दिया पिता को, ये तत्परता है। और तीसरी चीज भगवान कहते हैं संयतेन्द्रिय श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। श्रद्धा होगी ना तो वो इंद्रिय संयम में बदल जाएगी, श्रद्धा होगी तो आपको संयम करना नहीं पड़ेगा, श्रद्धा होने से अपने आप संयम होगा। अभी सामान्य उदाहरण हमारे जीवन का, सत्संग में श्रद्धा है तो तत्परता है, और उसके बाद संयम भी तो है। आपको यहां 1 घंटा बैठना है बिना हिले डुले, कमर भी तो दुखती होगी थोड़ा बहुत, मुझे लगता है कि दुखती भी नहीं होगी वो। आप इतने शांति से आप अपने घर में बैठ सकते हैं क्या, इतने शांति से बिना हिले डुले, बिल्कुल आप मूर्ति बनकर आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बिल्कुल मूर्ति बन के बैठ जाते हैं, लेकिन बिल्कुल सहजता से। और इतने ही सहजता से यदि आपको घर में बैठना हो तो आप बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। ये इंद्रिय संयम है, ये श्रद्धा है, तत्परता होगी, तत्परता है अपने आप उसमें इंद्रिय संयम आएगा। और बालक नचिकेता के जीवन में कितना बड़ा इंद्रिय संयम है, जब उनको भेजा गया, गए यमलोक, और वहां 3 रात्रियों तक, तीसरो रात्रि ही यद अवात्सिर गृह में,